आज है 20 जून दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरने के एक दिन बाद राज्यपाल एनएन वोरा ने प्रशासन की कमान संभाली। आम लोगों ने कहा कोई नई बात नहीं है,
हमने गवर्नर रूल का निफाज यहां पहले भी देखा है। लोगों का ये भी कहना था कि जो काम है उनके स्पीडी हो रहे हैं।
2019 के चुनावों पर कश्मीर का कितना साया होगा, विश्लेषक की राय।
मनाने की तैयारी तो पूरी हमको नजर आ रही है, क्योंकि कश्मीर को पहले भी परस्पर 2014 से लेकर अब तक मुद्दा बनाया जा रहा है।
क्या अपने सब परमाणु हथियार खत्म करेगा उत्तर कोरिया?
अगर नॉर्थ कोरिया के पास से न्यूक्लियर वेपन्स चले जाएंगे तो उसके पास जो लेवरेज है वो खत्म हो जाएगा।
विस्तार से सुनेंगे दुनिया जहान में, पर ये सब विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। जम्मू कश्मीर में आज से राज्यपाल का शासन लागू हो गया है। कल बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद पीडीपी की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। विश्लेषकों का मानना है कि प्रदेश के सीधे केंद्र के शासन में आने के बाद राज्य में चरमपंथी विरोधी अभियान में तेजी आ सकती है। वहीं सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है कि रमजान में संघर्ष विराम के दौरान भी चरमपंथियों की गतिविधियां जारी रहीं, जिसकी वजह से संघर्ष विराम खत्म करना पड़ा। रावत का कहना है कि प्रदेश के राजनीतिक हालात का सेना के अभियानों पर कोई असर नहीं होगा। अफगान अधिकारियों के मुताबिक बागीस प्रांत में तालिबान के हमले में कम से कम 30 सुरक्षा बल मारे गए हैं। रविवार को तालिबान की ओर से ईद के मौके पर घोषित 3 दिनों का संघर्ष विराम समाप्त होने के बाद ये पहला बड़ा हमला है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का कहना है कि बीते साल किसी भी अन्य विकसित देश की तुलना में अमरीका में सबसे ज्यादा लोगों ने शरण की अर्जी दी है। OECD के मुताबिक इस दौरान यूरोप में शरण मांगने वालों की संख्या घटी है। OECD के मुताबिक साल 2017 में 3 लाख से अधिक लोगों ने अमेरिका में शरण मांगी। अमेरिका में शरण मांगने वालों की संख्या जहां 26% बढ़ी है, वहीं जर्मनी में शरण मांगने वालों की तादाद में 73% की कमी आई है। प्रवासी दोनों ही देशों में एक विवादित मुद्दा है। राष्ट्रपति ट्रंप प्रवासियों को उनके बच्चों से अलग करने की वजह से तीखी आलोचना का सामना कर रहे हैं। वहीं जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल पर प्रवासियों पर सख्ती बरतने का दबाव है। एक समारोह में बोलते हुए जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि हम अपनी मानवीय जिम्मेदारियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा,
Deutschland steht sowohl zu seiner humanitären Verantwortung, Menschen zu schützen, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind,
हम आतंकवाद और युद्ध से जान बचाकर भाग रहे लोगों की रक्षा करने की अपनी मानवीय जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं, और हम यूरोपीय एकजुटता की अपनी जिम्मेदारी के साथ भी हैं। दोनों साथ साथ हैं, क्योंकि आप किसी और से भी देखें, प्रवासी मुद्दा यूरोपीय चुनौती ही है। शायद फिलहाल ये ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, और ये यूरोप को एक साथ रखने से जुड़ी है। ये थे जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। हंगरी की सरकार आज प्रवासियों के लिए सख्त कानून को मंजूरी दे सकती है। आलोचकों का कहना है कि नया कानून प्रवासियों को और अधिक लांछित करेगा और मानवाधिकार समूहों को अपराधी घोषित कर सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि नए कानून देश को अवैध प्रवासियों से बचाएंगे। दक्षिण इंग्लैंड के एक अस्पताल में बुजुर्गों की मौत की जांच में पता चला है कि 450 मरीजों की मौत बिना चिकित्सीय जरूरत के शक्तिशाली दर्द निवारक दिए जाने की वजह से हुई थी। गॉस्पोर्ट वॉर मेमोरियल अस्पताल में साल 1989 से 2000 के बीच हुई इन मौतों की जांच में यह भी पता चला है कि संभवतः 200 और मरीज इसी वजह से मारे गए होंगे। मारे गए लोगों के परिवार दशकों से न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जांच आयोग ने अब सरकार और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इराक के सबसे बड़े कबीले ने इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए सरकार से हथियार मांगे हैं। बीते साल इस्लामिक स्टेट के कई इलाकों में हारने के बावजूद शम्मार कबीले को लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी सैन्य बलों की इस्लामिक स्टेट पर जीत में इस कबीले ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब इसका कहना है कि सरकारी सैन्य बल इस्लामिक स्टेट से उसकी रक्षा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बीते रविवार इस्लामिक स्टेट ने शम्मार कबीले के कई गांवों पर हमला करते हुए 30 से अधिक लोगों को अगवा कर लिया था। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। जम्मू कश्मीर सरकार से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में गवर्नर शासन लगा दिया गया है। प्रशासन संभालने के तुरंत बाद राज्यपाल एन एन वोरा ने आला अफसरों की बैठक बुलाई और राज्य में कानून व्यवस्था का जायजा लिया। आप जानते ही हैं, कल बीजेपी ने अचानक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती की सरकार अल्पमत में आ गई और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विश्लेषकों का कहना है कि अब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चरमपंथी विरोधी अभियान को तेज करेगी। ताजा रिपोर्ट भेजी है श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर ने।
कश्मीर में सत्ता का केंद्र कहलाने वाले सिविल सेक्रेटेरिएट में आज सन्नाटा था। अधिकारी तो सक्रिय थे क्योंकि गवर्नर नरेंद्रनाथ वोहरा ने प्रशासन की कमान संभाली है, परंतु मुख्यमंत्री का चैंबर और दूसरे मंत्रियों के दफ्तर बंद थे। पिछले 3 वर्षों में तीसरी बार जम्मू कश्मीर पर गवर्नर राज लागू किया गया है। इस बीच सैन्य ऑपरेशनों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। कल रात दक्षिणी कश्मीर के त्राल कस्बे में 3 चरमपंथी पुलिस और सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए। स्थिति गंभीर तो है ही, परंतु राजनीतिक स्तर पर सरकार टूटने से जो भूकंप आया, इस पर लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया जताई है।
तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है जो चाहे गवर्नर रूल हो चाहे ये भी, तो सेंटर से ही इनकी उनको डायरेक्शन आ जाती है किस तरह से आपको स्टेट रन करनी है।
हमने गवर्नर रूल का निफाज यहाँ पहले भी देखा है, लोगों का ये भी कहना था कि जो काम है उनके स्पीडी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी बताना चाहूँगा कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी ज़रूरत रहती है।
इससे पहले भी हो चुके हैं, ये आज फर्स्ट टाइम नहीं है कश्मीर में कि गवर्नर रूल हो रहा है, इससे पहले भी हो चुके हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है जो उस टाइम हालात थे और उस हालात में वो चीज़ें हो पाई है।
मुख्य विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद इन्हें ये ताना भी सुनाया कि इन्हें सत्ता का लालच था।
At this point in time, as a former chief minister myself, I can only say, personally speaking, I wish she had gone with some dignity intact. I wish she had chosen to go rather than be shunted out like this.
उमर का कहना था कि इन्हें अच्छा लगता अगर महबूबा मुफ्ती खुद ये गठबंधन तोड़कर सत्ता त्याग देती, परंतु महबूबा मुफ्ती ने दोबारा स्पष्ट किया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन सत्ता के लिए नहीं था बल्कि राज्य के सभी प्रांतों को एकजुट रखने के लिए था। उन्होंने कहा है कि वो बातचीत की वकालत और सिक्योरिटी पॉलिसी का विरोध करती रहेंगी।
हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी का एजेंडा है हीलिंग टेस्ट पॉलिसी का, जो पीडीपी का एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, यहाँ के लोगों से भी बात होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रास्ते खुलने चाहिए, उस पॉलिसी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं है। मस्कुलर पॉलिसी या सख्ती की पॉलिसी यहाँ नहीं चल सकती।
गौरतलब है भारत सरकार के पूर्व IAS ऑफिसर नरेंद्रनाथ वोहरा पिछले 70 वर्ष में कश्मीर के पहले गवर्नर हैं जो कार्यकाल के 10 साल पूरे कर चुके हैं और इनके कार्यकाल में ही अब तक 3 बार कश्मीर में गवर्नर राज लागू हुआ है। 1975 में जब मुफ्ती सईद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तो इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ और शेख कांग्रेस के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बनाए गए, परंतु मुफ्ती ने समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी तो पहली बार राज्य पर गवर्नर शासन लागू हुआ। 40 वर्ष में ये 8वीं बार है कि कश्मीर में गवर्नर राज द्वारा दिल्ली का सीधा प्रशासन चलेगा। एनएन वोहरा भारत के रक्षा सचिव और गृह सचिव रह चुके हैं और इन्हें कश्मीरियों से बातचीत के लिए भारत सरकार का मुख्य प्रतिनिधि भी बनाया गया था। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
कई हलकों में आशंका जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार न रहने पर वहां तनाव और हिंसा में बढ़ोतरी हो सकती है। जैसा कि आपने रिपोर्ट में सुना भी कि कल इस्तीफा देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने खबरदार किया कि कश्मीर में मस्कुलर पॉलिसी यानी बल की नीति काम नहीं करेगी। कश्मीर में पिछले 3 दशक से जारी अलगाववादी आंदोलन अब किस दिशा में जाएगा? क्या कश्मीर में एक बार फिर खून खराबे में बढ़ोतरी होगी? ये सवाल मैंने पूछा वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा से।
देखिए, कहने को बयानबाजी तो सही है, लेकिन क्या उपनीति आप अपनाएंगे जो अभी तक आपने नहीं अपनाई है? सवाल ये उठता है, क्या एरियल बॉम्बिंग करेंगे, क्या कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, क्या जैसा सीरिया में बॉम्बिंग होती है वैसे होगी कश्मीर में? वो असंभव है। ये सिर्फ एक राजनीतिक तौर पे अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बना के पेश करने वाला वक्तव्य है जो अभी तक राम माधव की तरफ से आया है। गवर्नर साहब की तरफ से अभी कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आया है, और अगर कुछ ऐसा जब करना होता तो ये कहे बिना करना होता है, कह के करने वाली बात ऐसी स्थिति में नहीं होती है।
नहीं, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि जो चरमपंथी संगठन है, जो मिलिटेंट्स वहां घूम रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ चारों तरफ से कॉर्डन करके मिलिट्री कार्रवाई होगी, ये और इसमें इजाफा होगा, ये तो कहा ही जा सकता है।
ये तो अपेक्षा करनी चाहिए हमको, आम हालात में भी अपेक्षा होनी चाहिए कि जो आतंकवादी संगठन है उनके खिलाफ कार्रवाई हो बिना किसी नरमी के। मेरा सिर्फ एक तकाता है कि ये सब जो बयानबाजी है
ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखते हैं कि किस तरह से अमरनाथ यात्रा के बारे में तैयारी की जाती है। और सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन जो केंद्र के सामने और गवर्नर साहब के सामने है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो शांतिपूर्ण वातावरण में हो।
जो चुनी हुई सरकार जब होती है, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके ऊपर जनता का दबाव रहता है। अब जब चुनी सरकार नहीं है तो जनता का सीधे दबाव नहीं रहेगा। उस स्थिति में क्या वहाँ जो तनाव है या हिंसा है वो कंट्रोल में होगी या उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है?
देखिए, मैं इस वक्त इस पे कोई अटकल लगाना नहीं चाहूंगा और मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर शांति बने, अमन कायम हो। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो अमन के लिए अच्छी चीज नहीं है। वहाँ पर बहुत से ऐसे कश्मीरी हैं जो अमन पसंद हैं, और अगर कोई जो शक्ति प्रदर्शन वहाँ पर जिसकी तैयारी की जा रही है, अगर उसमें कोई कोलेटरल डैमेज होता है, उसमें कुछ जो निरीह लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती है, तो फिर वो मैसेज अच्छा नहीं जाता है। और कश्मीर, देखिए, हम जो मर्जी कहते रहे, कश्मीर पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर रहती है, और इसलिए जो भी हमारी सरकार करे राष्ट्रहित में करे, लेकिन सोच समझ के करे।
2019 का जो चुनाव है उसमें कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा या नहीं बने, उसको बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा?
बनाने की तैयारी तो पूरी हमको नजर आ रही है, क्योंकि कश्मीर को पहले भी परस्पर 2014 से लेकर अब तक मुद्दा बनाया जा रहा है। विभिन्न प्रदेश के इलेक्शन में कश्मीर की नुमाइश करके मेनलैंड इंडिया में पोलराइजेशन की चेष्टा हुई है और पोलराइजेशन हुई भी है। तो ये कोई कश्मीर को सुलझाने वाला अप्रोच तो नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी वहाँ किया जाए वो सोच समझ के किया जाए।
लेकिन जो चरमपंथी संगठन है या कहिए कि जो अलगाववादी संगठन है, अब उनके नजरिए में क्या फर्क आएगा?
देखिए, अलगाववादी संगठनों के नजरिए में कोई फर्क नहीं आएगा। अब वो अपनी तरफ से ये प्रचार करेंगे कि सारी हुकूकों का हनन हो रहा है, जो वहाँ पर जो हमारी फौज है वो जो है वहाँ पर किलर एक ट्रूप्स की तरह वहाँ पर घूम रही है। इस सब प्रचार से बचने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमको बहुत सोच समझ के वहाँ कदम उठाने हैं। भारत का पूरी दुनिया में इसलिए इज्जत है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक डेमोक्रेसी हैं, और गवर्नर रूल भी अगर है तो हम पूरी तिलांजलि अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को नहीं दे सकते।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र bbchindi.com के पहले पन्ने पर डालते हैं, जहां महबूबा मुफ्ती पर एक खबर है, पिता की परछाई से अपने वजूद तक। ये हमारे संवाददाता रियाज मसरूर ने महबूबा मुफ्ती के राजनीतिक करियर पर एक बहुत दिलचस्प विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अगर आपके पास इंटरनेट है, फुर्सत है, तो ज़रूर आइए और इसको पढ़िए।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर और मैं हूँ राजेश जोशी। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ऐलान किया है कि केंद्र सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन अक्टूबर में अपना कार्यकाल पूरा होने पर अमेरिका लौट जाएंगे। जेटली ने लिखा कि कुछ दिन पहले अरविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें बताया कि कुछ पारिवारिक कारणों से अब वो अमरीका लौट जाना चाहेंगे। उन्हें 16 अक्टूबर 2014 को 3 साल के लिए सरकार का प्रमुख आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, पर बाद में उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। अरविंद सुब्रमण्यन के इस फैसले के क्या मायने हैं, यह जानने के लिए मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार और द वायर के संपादक एम के वेणु से।
आपको याद होगा रघुराम राजन ने भी पूर्व जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हमारे जो हेड थे, आरबीआई के जो गवर्नर थे, तो उन्होंने भी यही बात कही थी, मगर तब भी लोगों को ये पता था कि उनका इस सरकार के साथ उनकी कई विषयों में ज्यादा बनी नहीं। अब जहां तक अरविंद सुब्रमण्यन का सवाल है, मैं ये कहूंगा कि इनको वैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो उनका टेन्योर वैसे ठीक रहा है और उन्होंने कई अच्छे काम भी करे और इकोनॉमिक सर्वे जो पॉलिसी के जो क्षेत्र में उन्होंने अपना रिसर्च के कंट्रीब्यूशन वगैरह और कई जो चीजें जो अर्थव्यवस्था के बारे में जो खामियां थी उन्होंने बिल्कुल सामने बिल्कुल रखा और लोगों के सामने रखा बिना हिचकिचाहट के। और
जब से अरविंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति हुई है इस पद पर, तब से उन्होंने सरकार को किस तरह की सलाह दी? क्या वो सलाह सरकार को हमेशा माफिक आई या सरकार से उनके कभी मत विरोध भी रहे, उस पर थोड़ा रोशनी डालिए।
देखिए, अरविंद सुब्रमण्यम क्योंकि बाहर से आए थे और इनकी बाहर भी नौकरी इनकी बरकरार है, तो तो ये सलाह तो खुल के दे रहे थे और यहाँ तक कि खुल के दे रहे थे कि कई विषयों में सरकार को इनका जो बिल्कुल जो फ्रैंक ओपिनियन वगैरह जिन्होंने दिया वो पसंद भी नहीं आया। और ये केवल दो क्षेत्र में आपको बताता हूँ, जिस तरह सरकार ने जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किया तो इन्होंने बिल्कुल कहा कि ये जिस तरह हुआ ये गलत हुआ है, और दूसरा डिमोनेटाइजिंग से भी इनकी सहमति नहीं थी। और हालांकि खुल के इन्होंने बात नहीं बोला मगर साफ पता लग रहा था कि जिस तरह वो जिस टोन में वो कह रहे थे। और तीसरा उन्होंने जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो बजट से पहले आता है फरवरी में, उस सर्वे में उन्होंने साफ लिखा कि इस सरकार के पिछले 4 साल में और उससे ज्यादा भी 5 साल में, उससे पहले भी 1 साल उन्होंने जोड़ा, कि किसान की जो आमदनी है वो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और उन्होंने कहा था कि स्टैग्नेंट है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि पिछले 5-6 साल में उन्होंने कहा कि जो निजी निवेश जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल स्टैग्नेंट रहा है। और उन्होंने ये भी बोला कि इतने वर्ष लगातार निजी निवेश इतनी बुरी तरह नीचे नहीं गिरा है।
लेकिन इसके अलावा एक और बात थी कि जो समाज में गैर बराबरी है उस पर भी उन्होंने कुछ इशारतन कुछ बात कही।
इशारतन नहीं, उन्होंने एक नहीं दो बार ही, इन्होंने और रघुराम राजन दोनों ने अलग अलग समय पे ये जरूर बोला, जिस वक्त ये जो गौरक्षा और गौरक्षा से जुड़े हुए जो हिंसा जो देश में खासकर जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जो फैल रही थी, तब दोनों ने अलग अलग समय में बोला कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर स्थिरता देनी है और उसमें अगर इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है तो सोशल लेवल पे शांति होना जरूरी है और सोशल क्लीवेजेस, रघुराम राजन तो साफ बोला, इन्होंने भी एक बार ही बोला कि उसका नेगेटिव असर पड़ता है अर्थव्यवस्था में,
यानी समाज में जो दरारें पड़ी हुई हैं उसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है।
बिल्कुल, और दोनों ये मानते हैं और दोनों ने अपने अलग अलग टाइम पे ये कहा है कि कोई भी समाज जिसमें इतनी सामाजिक दरारें हो और यूनिटी ना हो सामाजिक लेवल पे, वो एक लंबे दायरे में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उनको अचीव करने में मुश्किलें पैदा होती है और इतने आसानी से वो ग्रो नहीं कर पाती।
ये थे द वायर के संपादक एम के वेणु।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
आज बुधवार है और वक्त है दुनिया जहान का। पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के चेयरमैन किम जोंग उन के बीच ऐतिहासिक मुलाकात तो हुई और दोनों नेताओं ने कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियार मुक्त करवाने की प्रतिबद्धता भी जताई, पर क्या बरसों से अलगाव में पड़ा उत्तर कोरिया अपना परमाणु कवच वाकई खत्म करेगा? सुनिए कुलदीप मिश्र से दुनिया जहान में।
दुनिया जहान।
They will be met with fire and fury like the world has never seen.
ये हैं पिछले साल अगस्त के डोनाल्ड ट्रंप और अब मिलिए इस साल जून के डोनाल्ड ट्रंप से।
The past does not have to define the future. Yesterday's conflict does not have to be tomorrow's war.
बीता हुआ कल हमारा वर्तमान तय करे ये जरूरी नहीं। अतीत के विवाद को भविष्य के युद्ध में बदलने नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन किम और मैंने अभी एक साझा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें उन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप में पूरी तरह से परमाणु निरस्त्रीकरण की अपनी अटल प्रतिबद्धता दोहराई है। हम इस समझौते को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सशक्त बातचीत करने पर भी सहमत हुए हैं।
As soon as possible.
एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था और दूसरी ओर उसे अपने मिसाइल परीक्षणों से चुनौती दे चुका, वैश्वीकरण की आर्थिकी से लगभग कट चुका एक छोटा देश। लेकिन फिर सामने आई दोनों देशों के सर्वोच्च नेताओं की हाथ मिलाते हुए बहुप्रतीक्षित तस्वीरें। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की तस्वीरों ने विश्व राजनीतिक पटल पर बेशक कुछ उम्मीदें पैदा की हैं। दोनों देशों के बीच तनाव का ग्राफ कुछ महीनों में ही नीचे आ गया है, लेकिन क्या इस मुलाकात ने अब तक उफान मार रही सभी आशंकाओं को भी खत्म कर दिया है? अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो कह चुके हैं कि निरस्त्रीकरण दर्शाने के बाद ही उत्तर कोरिया से आर्थिक पाबंदियां हटाई जाएंगी, लेकिन निरस्त्रीकरण के लिए उत्तर कोरिया क्या वाकई उस दिशा में साफ नीयत से काम करेगा? JNU में कोरियन स्टडीज की प्रोफेसर वैजयंती राघवन इससे इत्तेफाक नहीं रखती।
डीन्यूक्लियराइजेशन जब कहते हैं तो इसका मतलब है एक 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 करके नष्ट करें और या फिर इंटरनेशनल एजेंसी आके उसको वेरीफाई करें, चेक करें। लेकिन जहां नॉर्थ कोरिया कंसर्न्ड है, मुझे नहीं लगता है डीन्यूक्लियराइजेशन इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस पे यहां तक के लागू हो पाएगा।
ट्रंप और किम के बीच हुए इस समझौते में पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में निरस्त्रीकरण की बात कही गई है, मतलब दक्षिण कोरिया में भी अगर अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां और हथियार हैं तो वे भी अमेरिका को वापस लेने होंगे। लेकिन उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों और तकनीक को लेकर अमेरिका की क्या अपेक्षाएं होंगी? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में प्रोफेसर मुख्तदर खान,
ये हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया के जो हथियार हैं वो या तो चाइना को दे दें या अमेरिका को दे दें या रशिया को दे दें या उसको डीकमीशन कर दें। दूसरी चीज ये है कि जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है और उसमें सबसे अहम जो कंपोनेंट है वो प्यूरिफिकेशन है यूरेनियम का, तो वो जो प्लांट्स है वो बंद कर दें, यानी उनकी जो सेंट्रीफ्यूजेस है वो बेसिकली तोड़फोड़ कर देंगे। इसका मतलब ये है कि 10 साल के बाद अगर कोई नई हुकूमत आ जाती है और वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहती है तो वो बेसिकली विल बी स्टार्टिंग एट स्क्रैच। तो ये है अमेरिका का गोल। क्या ये होगा? बिल्कुल ही नहीं। अगर नॉर्थ कोरिया के पास से न्यूक्लियर वेपन्स चले जाएंगे तो उसके पास जो लेवरेज है वो खत्म हो जाएगा। फिर अमेरिका ऑलरेडी साबित कर चुका है कि इट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ईरान के मामले में इट हैज ब्रोकन द डील।
सिर्फ ईरान ही नहीं है जिसकी मिसाल किम जोंग उन के मस्तिष्क में होगी। वो लीबिया के बारे में भी सोच रहे होंगे, जिसका जिक्र इस मुलाकात से पहले किया था अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने।
I think that's right. I think we're looking at the Libya model of 2003-2004.
मुझे लगता है कि ये सही है। मुझे लगता है कि हम लीबिया मॉडल की ओर देख रहे हैं, मतलब सभी परमाणु हथियारों से पीछा छुड़ाना, उन्हें नष्ट करना और उसे अमेरिका के टेनेसी स्थित ओक रिज ले जाया जाना।
जॉन बोल्टन 2003 में बुश कार्यकाल के समय लीबिया के साथ हुए निरस्त्रीकरण पर समझौते का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसने लगे हाथ उस वक्त के लीबियाई प्रशासक कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के हश्र की यादें ताज़ा कर दीं। समझौते के 8 साल बाद 2011 में गद्दाफी को अपने मुल्क में एक पश्चिम समर्थित हथियारबंद विद्रोह का सामना करना पड़ा। गद्दाफी ने भी जवाबी हिंसा से इसका प्रतिवाद किया।
हम लीबिया को शुद्ध करने के लिए लाखों की संख्या में मार्च करेंगे, मकान मकान, घर घर, सड़क सड़क और व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचेंगे जब तक देश से अशुद्धियां साफ नहीं हो जाती।
लेकिन अंततः ये लड़ाई गद्दाफी हार गए। विद्रोही लड़ाकों ने सिर्त की एक सड़क पर उनकी हत्या कर दी। बीबीसी के उस वक्त के उत्तरी अमेरिका एडिटर मार्क मार्डल के मुताबिक, जब अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन को गद्दाफी की मौत की खबर दी गई तो उन्होंने कहा, वाओ। हालांकि प्रोफेसर मुख्तदर खान कहते हैं कि जॉन बोल्टन उत्तर कोरिया के संबंध में जिस लीबियाई मॉडल का जिक्र कर रहे थे उसे गलत समझा गया।
जॉन बोल्टन का जो रेफरेंस था वो 2003 के ऊपर था, जहाँ पर जो बेसिक प्रिलिमिनरी जो टेक्नोलॉजी थी न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ लीबिया ने, वो बेसिकली यूं कहिए कि वो गाड़ी बनाना चाह रहा है, ऑलरेडी कुछ नहीं बनाया, सिर्फ टायर्स बनाया। तो उसने कहा ठीक है मैं टायर बनाना छोड़ देता हूँ, आप मुझे इंटरनेशनल कम्युनिटी में दाखिल कर लें, मुझे एड दे दें वगैरह वगैरह। 2003 के बाद लीबिया में न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ कोई जाने के लिए रास्ता भी नहीं था, तो वो मॉडल जॉन बोल्टन चाहते थे कि ये डीन्यूक्लियराइजेशन के बाद नॉर्थ कोरिया के पास कोई रास्ता भी ना हो, कोई डायरेक्शन ही ना हो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ। लेकिन जो पब्लिक ने मिसअंडरस्टैंड किया कि देखिए कर्नल गद्दाफी ने क्या हाल बना और किम जोंग उन का भी वही हाल बनेगा।
उत्तर कोरिया को लीबिया से अपनी तुलना इसलिए भी पसंद नहीं आई क्योंकि लीबिया का परमाणु कार्यक्रम उस वक्त बेहद शुरुआती चरण में था, जबकि डिफेंस एंड इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुमान के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 2017 में ही करीब 60 परमाणु हथियार थे। ट्रंप इस मामले को बिगड़ने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने न सिर्फ बोल्टन के बयान को खारिज किया बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक अपने मंत्रिमंडल से ये भी कहा कि वे उत्तर कोरिया पर अनाप शनाप बोलने से बचें। जॉन बोल्टन को भले ही गलत समझा गया, लेकिन जाने अनजाने इसने समूची दुनिया को गद्दाफी की कहानी तो याद दिला ही दी। लेकिन प्रोफेसर मुख्तदर खान को लगता है कि उत्तर कोरिया लीबिया वाली गलती नहीं करेगा।
नॉर्थ कोरिया इतना बेखौफ नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब गल्फ वॉर हुई थी, पहली गल्फ वॉर, जब अमेरिका ने चंद ही दिनों में इराक को पूरी तरह से हरा दिया था, तो उस जमाने में जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे उनसे पूछा गया था कि आपका क्या लेसन आप ड्रॉ करते हैं गल्फ वॉर से। तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं तो अमरीका के साथ ज्यादा झगड़ा ना करेंगे।
प्रोफेसर खान ये भी कहते हैं कि अमरीका की समूची राजनीतिक जमात इस समझौते से खुश नहीं है क्योंकि अमरीका को इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या निकट भविष्य में ऐसे कुछ द्वंद्व हैं जो स्थितियों को फिर से बिगाड़ सकते हैं? वैजयंती राघवन।
ट्रंप ने ये कहा है कि वी विल स्टॉप मिलिट्री एक्सरसाइज। अब ये वाली बात मुझे नहीं लगता है कि साउथ कोरिया के साथ डिस्कस करके की थी। अब नाउ साउथ कोरिया को लगता है कि दिस इज अ मेजर कंसेशन। इसका ये मतलब है कि ट्रंप चूक रहा है अपने कमिटमेंट टूवर्ड्स साउथ कोरिया। इसको लेकर भी हो सकता है देयर कुड बी डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री पार्टीज कंसर्न्ड।
ट्रंप और किम की मुलाकात से दोनों देशों की दुश्मनी पर ब्रेक तो फिलहाल लग गया है, लेकिन रिश्तों में उलझने अभी कम नहीं हुई हैं।
उम्मीद है अमेरिका उत्तर कोरिया के समझौते पर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और अब वक्त है खेल समाचारों का। विश्व कप फुटबॉल के तमाम ताज़ा जानकारियों के साथ सूर्यांशी पांडे यहाँ स्टूडियो में मेरे सामने बैठी हुई हैं। बहुत ही मसरूफ़ हैं, बहुत ही मशगूल हैं। क्या पढ़ रही हैं आप, बताइए क्या खबर है?
क्योंकि राजेश जी, इतनी अच्छी खबर ही है पुर्तगाल के जो फैंस हैं उनके लिए, क्योंकि पुर्तगाल ने ये मुकाबला भी जीत लिया है मोरक्को के खिलाफ और 1-0 से मुकाबला जीता है। और अब अगर अंक तालिका की बात करें तो ग्रुप बी में पुर्तगाल अब 4 अंकों के साथ सबसे ऊपर है, जबकि पहले ईरान 3 अंकों से ऊपर था। और एक बात और यहाँ पर दिलचस्प होगी कि गोल जिसने किया है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिन्होंने पुर्तगाल के लिए गोल किया। और मैं याद दिलाना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि स्पेन और पुर्तगाल के बीच जब 15 जून को जो मुकाबला हुआ था उसमें भी, मतलब आखिर में 3 स्पेन ने गोल किए थे और 2 पुर्तगाल ने किए थे, लेकिन रोनाल्डो ही एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे वहां पर गोल किया और 3-3 से ड्रॉ किया था मुकाबला, और पुर्तगाल को और स्पेन को वहीं पर, मतलब स्पेन को वहीं पर रोक दिया कि भाई साहब ये तो ड्रॉ है,
उसकी आंधी को वहीं पर थाम लिया।
और अगर हम बात करें आने वाले मुकाबले की, जो कि 8:30 बजे शुरू होगा, सऊदी अरेबिया और उरुग्वे का मुकाबला, और ये ग्रुप ए का मुकाबला है। यहाँ पर ये बात बताना बहुत जरूरी कि सऊदी अरेबिया सबसे नीचे अंक तालिका में है 0 के साथ, क्योंकि रूस के साथ जो उसका पहला मुकाबला हुआ था वो 5-0 से रूस जीता था, तो इस वजह से सऊदी अरेबिया को ये मुकाबला जीतना बेहद अहम है। और उरुग्वे की बात करें तो वो अभी काफी मजबूत स्थिति में है, 3 अंकों के साथ वो ऊपर है।
तो 8:30 बजे के बाद क्या होगा अभी तो खैर, सिर्फ आप किसकी तरफ है?
मेरा तो उरुग्वे के वो जाता है।
अच्छा,
और अगर हम बात करें टेनिस की तो आज ये पहले जो मुकाबला हुआ था ये मुकाबला बेहद अहम है भारत के लिहाज से, क्योंकि यूकी भामरी जो हैं वो हार गए थे और मिलोस राउनिच के खिलाफ उन्होंने मुकाबला खेला था, तो 6-1, 3-1 से ये मुकाबला जो है वो हार चुके थे। और ये क्वींस क्लब ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट चल रहा है टेनिस में जिसमें यह मुकाबला हुआ था और वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज मुकाबला है स्टैन वावरिंका और सैम करी का जो कि चल रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यांशी जी, आपने फुटबॉल और टेनिस दोनों की जानकारी दी, शुक्रिया आपका। और सभा के अंत में चलते चलते एक नज़र सुर्खियों पर।
जम्मू कश्मीर में प्रशासन की कमान राज्यपाल एनएन वोहरा ने संभाल ली है। कल बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद पीडीपी की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अफगान अधिकारियों के मुताबिक बागीस प्रांत में तालिबान के हमले में कम से कम 30 सुरक्षा बल मारे गए हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का कहना है कि बीते साल किसी भी अन्य विकसित देश की तुलना में अमेरिका में सबसे ज्यादा लोगों ने शरण लेने की अर्जी दी है। हंगरी की सरकार आज प्रवासियों के लिए सख्त कानून को मंजूरी दे सकती है। सरकार का कहना है कि नए कानून देश को अवैध प्रवासियों से बचाएंगे। दक्षिण इंग्लैंड के एक अस्पताल में बुजुर्गों की मौत की जांच में पता चला है कि 450 से ज्यादा मरीजों की मौत बिना जरूरत के शक्तिशाली दर्द निवारक दिए जाने की वजह से हुई थी। बीबीसी समाचार।
फिलहाल दिन भर में इतना ही। आज के दिन हमारा आपका साथ यहीं तक है, पर bbchindi.com 24 घंटे आपके साथ है। इस कार्यक्रम को फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने में मदद की गुरप्रीत कौर ने, और स्टूडियो मैनेजर थे राजेश जोशी। मैं राजेश चौहान, माफ कीजिएगा, मैं राजेश जोशी आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।